श्रृंखला में आज आठवें स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसके पहले अध्याय के एक श्लोक को दोहराएंगे। कृपया दोहराइए। आत्मवास्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृधकस्य स्विद्धनम्। आत्मवास्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृधकस्य स्विद्धनम्। आत्मवास्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृधकस्य स्विद्धनम्। आत्मा परमात्मा आवश्यम सर्वत्र रहते हुए इदं यह ब्रह्मांड विश्वम सारे ब्रह्मांड अथवा सारे स्थान यह जो भी किंचित प्रत्येक विद्यमान वस्तु जगत्यां संसार में सर्वत्र जगत हर वस्तु चर तथा अचर तेन उनके द्वारा त्यक्तेन नियत भुञ्जिताः भोग कर सकते हो मां मत गृधः स्वीकार करो। कस्य स्वित किसी अन्य का धनम धन। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहां कहीं भी चर तथा अचर प्राणी हैं विद्यमान हैं। अतएव मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत है। उसे पराय धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य स्वयंभू मनु भगवान की दिव्य स्थिति बतलाकर अपने पुत्रों तथा पौत्रों को अब उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की है। मनु का यह उपदेश न केवल अपने पुत्र पौत्रों के लिए है अभी तो सारे मानव समाज के लिए है। मनुष्य शब्द मनु से व्युत्पन्न है क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य इत्यादि मनु के वंशज हैं। भगवद गीता में भी मनु का उल्लेख है जहां भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा सूर्यदेव विवस्वान को दी और विवस्वान ने इसे मानव के पिता मनु को बतलाया। फिर मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को बतलाया। स्वयंभू मनु तथा वैवस्वत मनु का उत्तरदायित्व एक जैसा है। वैवस्वत मनु सूर्यदेव विवस्वान से उत्पन्न हुए। जिनका पुत्र इक्ष्वाकु पृथ्वी का राजा हुआ। क्योंकि मनु मानवता के इत्यादि पिता समझे जाते हैं, इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनु मानवता के आदि पिता समझे जाते हैं, अतएव मानव समाज को चाहिए कि उनके उपदेशों का पालन करें। स्वयंभू मनु उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत तथा इस भौतिक जगत में विद्यमान है वह उन भगवान की संपत्ति है जो सर्वत्र परम चेतना के रूप में उपस्थित हैं। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में परमेश्वर परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। प्रत्येक आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसमें वह रहे और परम पुरुष के आदेशानुसार कर्म करे, अतएव परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, प्रत्युत हमें यह समझना चाहिए कि हमें भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश मिला है। ऐसा ज्ञान पूर्ण साम्यवाद की ओर ले जाएगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं, किंतु यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया है वह राष्ट्रव्यापी नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के निमित्त है। किसी राष्ट्र या किसी व्यष्टि व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता, प्रत्येक वस्तु भगवान की है। इस श्लोक का यही अर्थ है, आत्मवास्यम इदम विश्वम, इस विश्व में जो कुछ भी है वह भगवान की संपत्ति है। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है यदि हर वस्तु भगवान की मानी जाए। भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, प्रत्युत भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। आत्मवास्यम इदम विश्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह वैश्विक साम्यवाद जगत की सारी समस्याएं हल कर सकता है। मनुष्य को वैदिक वाङ्मय से सीखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी उसकी संपत्ति नहीं है, यह तो उसे उसके कर्मों के अनुसार मिला होता है। कर्मणादैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये, 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर यंत्र हैं जो प्रत्येक जीव को मिले हैं, इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्रों पर आरूढ़ जैसे हैं। भगवान परमात्मा रूप में हरेक के हृदय में स्थित रहते हैं और प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते रहते हैं। वे इतने दयालु हैं कि जीव को उपयुक्त शरीरों में नाना प्रकार की इच्छाओं का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन जैसे हैं, यंत्रारूढानि मायया, ये यंत्र बहिरंगा शक्ति के भौतिक अव्ययों से बनाए जाते हैं और इस प्रकार जीव अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार दुख या सुख भोगते हैं। यह अवसर परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करे। हम में अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है, विशेष रूप से आजकल हम गगनचुंबी प्रसादों को बना रहे हैं और अन्य भौतिक सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि गगनचुंबी प्रसादों तथा यंत्रों को बनाने में जिन अव्ययों की आवश्यकता होती है उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बना सकता। सारा जगत पंच तत्वों के मेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः, गगनचुंबी प्रसाद मिट्टी जल तथा अग्नि का ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर अग्नि में पकाकर ईंटें बनाते हैं और इन्हीं ईंटों से गगनचुंबी प्रसाद की ऊंची रचना होती है। यद्यपि ईंटें मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, किंतु उनके अव्यय उसके द्वारा निर्मित नहीं होते। निसंदेह निर्माता के रूप में मनुष्य भगवान से वेतन प्राप्त कर सकता है, यही यहां पर कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मनुष्य विशाल गगनचुंबी प्रसाद तो बना सकता है, किंतु निर्माता व्यापारी या मजदूर कोई भी इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। स्वामित्व तो उस व्यक्ति का होता है जिसने इस प्रसाद के लिए धन व्यय किया है। भगवान ने जल, मिट्टी, वायु, अग्नि तथा आकाश की रचना की है और कोई भी इनका उपयोग करके वेतन प्राप्त कर सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, किंतु कोई स्वामित्व नहीं जता सकता, यह पूर्ण साम्यवाद है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की हमारी प्रवृत्ति का उपयोग केवल बड़े 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 एवं कीमती मंदिरों को बनवाने में होना चाहिए, जिनमें भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए, तब भवन बनवाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित की जानी चाहिए और हमें मात्र प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमें आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि नारद ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है, यावत् भ्रियेते जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। मनुष्य को चाहिए कि उतनी ही संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितनी शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त है, किंतु जो इससे अधिक के स्वामित्व की इच्छा जताता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। निसंदेह हमें खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। किंतु जब भगवान ने पक्षियों तथा मधुमक्खियों तक को ये जीवन की आवश्यकताएं दे रखी हैं, तो फिर वे मनुष्यों के लिए क्यों न दें? आर्थिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, हरेक वस्तु पहले से दी हुई है। अतएव मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और इसी विचार से प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। किंतु यदि कोई दूसरों के हिस्से में हस्तक्षेप करता है तो वह चोर है। हमें आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतएव यदि भाग्यवश हमें प्रचुर धन प्राप्त हो जाए तो ये हमें सदैव ये मानना चाहिए कि ये भगवान का है। कृष्ण भावनामृत में हमें पर्याप्त धन मिलता है, लेकिन हमें कभी यह नहीं समझना चाहिए कि यह धन हमारा है, यह तो भगवान का है और कार्यकर्ताओं अर्थात भक्तों को भक्तों में समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए। किसी भक्त को यह दावा नहीं करना चाहिए कि धन या संपत्ति उसकी है। यदि कोई यह सोचता है कि इस विराट ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी अंश उसका है तो उसे चोर समझना चाहिए और वे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्यया, कोई न तो प्रकृति की चौकसी से बच सकता है न उससे अपने इरादे छिपा सकता है। यदि मानव समाज नियम के विरुद्ध यह दावा करता है कि इस ब्रह्मांड की आंशिक या पूरी संपत्ति मनुष्य की है, तो ऐसे समाज को चोरों का समाज होने का शाप मिलेगा और उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। इससे पहले कि हम लोग इस अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करें, क्योंकि ये पहला अध्याय है स्कंद का, तो प्रभुपाद इसके विषय में क्या लिखते हैं इस स्कंद के विषय में और इस अध्याय के प्रारंभ में, उसको पढ़ेंगे और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों चरण कमलों में विनम्र सादर नमस्कार करता हूं। 1935 में जब वे राधा कुंड में रुके हुए थे तो मैं बंबई से उनके दर्शन करने गया था। उस समय उन्होंने मंदिर बनवाने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने के संबंध में मुझे अनेक महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि पुस्तकें प्रकाशित करना मंदिरों को बनवाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निसंदेह वे आदेश मेरे मन में अनेक वर्षों तक बने रहे। मैंने 1944 में अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1958 में जब मैं अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गया तो मैंने दिल्ली से श्रीमद् भागवत का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब भारत में श्रीमद् भागवत के 3 खंड छप चुके थे तो मैं 13 अगस्त 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अपने गुरु के सुझाव के अनुसार मैं पुस्तकों का प्रकाशन का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं। अब इस वर्ष 1976 में मैंने श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद पूरा किया है और 10वें स्कंद का सारांश लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुका है। अभी भी 8वें 9वें 10वें 11वें तथा 12वें स्कंदों का प्रकाशन शेष है। अतएव इस अवसर पर मैं अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं न तो कोई महान विद्वान हूं और न ही महान भक्त, मैं तो अपने गुरु का केवल एक विनीत दास हूं और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से इन पुस्तकों का प्रकाशित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। सौभाग्य से विश्व भर के विद्वान इन ग्रंथों की प्रशंसा कर रहे हैं। आइए हम मिलजुल कर कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत के अधिकाधिक खंडों का प्रकाशन करें। 8वें स्कंद के इस पहले अध्याय में चारों मनुओं स्वयंभू स्वारोचिष उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। 7वें स्कंद के अंत तक स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे ये भी जानना चाह रहे थे कि भगवान किस प्रकार न केवल भूतकाल में अपितु वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते रहते हैं और किस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज ये सब जानने को उत्सुक थे, अतः सुखदेव गोस्वामी ने भूतकाल में प्रकट हुए 6 मनुओं से आरंभ करके क्रमशः सभी मनुओं का वर्णन किया। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे, उनकी 2 पुत्रियां थीं आकुति तथा देवहूति, जिनसे क्रमशः यज्ञ तथा कपिल नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तृतीय स्कंद में कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके थे, अतः उन्होंने अब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया। आदि मनु अपनी पत्नी शत्रुपा सहित सुनंद नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। उन्होंने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। तभी मनु ने समाधि में ही भगवान की स्तुतियां तैयार की। जब राक्षसों तथा असुरों ने उन्हें निगल जाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञ ने अपने पुत्रों यामों तथा देवताओं की सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के राजा इंद्र का पद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे मनु का नाम स्वरोचिष था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों में भ्यूमत सुषेण तथा रोचिष्मत मुख्य हैं। इस मनु के युग में रोचन स्वर्ग लोकों का राजा इंद्र बना और तुषित इत्यादि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए यथा ऊर्ज तथा स्तंभ। उन्हीं में वेद शीरा था, जिसकी पत्नी तुषिता ने विभु को जन्म दिया। विभु ने 88,000 दृढ़ व्रतों अर्थात साधु पुरुषों को आत्मसंयम तथा तपस्या का उपदेश दिया। तृतीय मनु प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। उसके पुत्रों में पवन संजय तथा यज्ञहोत्र इत्यादि थे। इस मनु के राज्यकाल में वशिष्ठ के पुत्रों में प्रमद इत्यादि सप्तऋषि हुए। सत्य देवश्रुत तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत इंद्र बना। धर्म की पत्नी सुनंता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने सत्यजीत से युद्ध करने वाले यक्षों तथा राक्षसों का वध किया। तृतीय मनु का भाई तामस चतुर्थ मनु बना। उसके 10 पुत्र हुए, जिनमें पृथु ख्याति नर तथा केत प्रमुख थे। उसके राज्यकाल में सत्यगण हरिगण वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्तऋषियों में ज्योतिर्धाम मुख्य थे और त्रिशिक इंद्र बना। हरिमेधा के ही अपनी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान ने इन्हीं अवतार हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्षण के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज इसी घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरूपं। पुनातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक मद्गुरो मन्महाधना मन्नस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारकंठयोस्फुरा। हरे कृष्णा। सात स्कंद समाप्त हो चुके हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहले स्कंद में हम लोगों ने चर्चा की 19 अध्यायों पर, दूसरे स्कंद में 10 अध्यायों पर चर्चा हुई, तीसरे स्कंद में 33 अध्यायों पर चर्चा हुई, चौथा स्कंद 31 अध्यायों का बना हुआ है, पांचवें स्कंद में हमने 26 अध्यायों पर चर्चा की, छठे स्कंद में 19 अध्याय पर चर्चा हुई और सातवें स्कंद में 15 अध्यायों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब तक हम लोग 153 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं भागवत के। तो आप सब भाग्यवान हैं कि भागवत के 153 अध्यायों पर चर्चा हो चुकी है और अब ये आठवां स्कंद है जिसमें 24 अध्याय हैं, उसके बाद नौवां स्कंद जिसमें 24 अध्याय हैं और फिर सबसे महत्वपूर्ण 10वां स्कंद जिसमें 90 अध्याय हैं। बहुत बड़ा है ये 90 अध्यायों का स्कंद है। फिर 11वां स्कंद होगा जिसमें 31 अध्याय हैं और फिर 12वां और अंतिम स्कंद जिसमें केवल 13 अध्याय हैं। तो ऐसे करीब 182 अध्याय अभी बाकी हैं। 153 हो गए, 182 बाकी हैं, कुल मिलाकर 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इन अध्यायों की चर्चा अब हो चुकी, अभी 8वां स्कंद आज से प्रारंभ हो रहा है। इस 8वें स्कंद में प्रमुखता मनुओं का वर्णन हुआ है। जैसे परीक्षित महाराज ने स्वयंभू मनु के वंशजों को सुन लिया अब उन्होंने प्रश्न किया तो पहले तीन श्लोकों में परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि आपने स्वयंभू मनु के वंशजों को बता दिया, अब आप अन्य मनु भी तो हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो 14 मनु होते हैं, इन 14 मनुओं का वर्णन इस पूरे स्कंद में किया गया। तो जब प्रारंभ किया पहले इस अध्याय में, उन्होंने 4 मनुओं का वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, पहले दूसरे तीसरे चौथे। तो जैसे ही चौथे मनु का वर्णन कर रहे थे, करते करते उन्होंने कहा कि इस मनु में, इस चौथे मनु में ही भगवान ने हरि का रूप लिया और गजेंद्र की रक्षा की। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गजेंद्र की कथा बताइए। तो चौथे अध्याय तक इस स्कंद के गजेंद्र की कथा है। दूसरे अध्याय से प्रारंभ कर देते हैं, दूसरा तीसरा चौथा अध्याय गजेंद्र की कथा है। फिर उन्होंने पांचवें और छठे मनु का वर्णन प्रारंभ किया पांचवें अध्याय में। तो छठे मनु का वर्णन आते हुए समुद्र मंथन की लीला का वर्णन कर दिया। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा उसको विस्तार से बताइए। तो फिर आगे 12वें अध्याय तक ये समुद्र मंथन की लीला चल रही है, उसका ही वर्णन किया गया कि कैसे समुद्र मंथन हुआ इत्यादि। फिर उसको वर्णन करने के बाद 13वें और 14वें अध्याय में आगे आने वाले मनुओं का वर्णन किया, 7वें और फिर 8वें 9वें इत्यादि मनुओं का वर्णन हुआ। और उनका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 8वें मनु के समय में बलि महाराज वो इंद्र बनेंगे। तो जब ये कहा, और वो बलि जिनको भगवान ने बंदी बनाया था, जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा वो कथा सुनाइए। तो 13 और 14 में आगे आने वाले मनुओं का वर्णन हुआ, 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक काफी विस्तार से बलि महाराज की कथा को दिया गया। और फिर अंतिम अध्याय 24वां अध्याय जो बचा, उसमें क्योंकि वर्णन किया था कि ये जो 7वें मनु हुए, ये अपने पूर्व जन्म में राजा सत्यव्रत थे, छठे मनु में चाक्षुष मनु के समय। तो फिर आखिरी अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन हुआ कि कैसे मत्स्य अवतार आए और उन्होंने राजा सत्यव्रत की रक्षा की और वही राजा आगे चलकर फिर 7वें मनु बने। तो ऐसे ये पूरा 24 अध्यायों का स्कंद है, 8वां स्कंद। बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, जैसे गजेंद्र की लीला, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। और फिर समुद्र मंथन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लीला है, क्योंकि एक ही लीला में भगवान के कई अवतार हुए। ज्यादातर एक लीला में एक अवतार होते हैं भगवान के, लेकिन समुद्र मंथन में कई अवतार हुए, तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण लीला। और फिर उसके बाद बलि महाराज के विस्तार से कई अध्यायों में उनकी लीला का वर्णन है। तो ऐसे ये पूरे स्कंद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 8वां स्कंद, अब पहला अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें हमने बताया कि स्कंद में 14 मनु हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु आते हैं, तो आप सोचिए ब्रह्मा जी के जीवन में कितने मनु आते होंगे, हजारों मनु आ जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन में 14 मनु। ब्रह्मा जी का जीवन 1000 चतुर्युग का है, तो जब 1000 चतुर्युग, ये केवल उनका दिवस है, रात्रि नहीं, तो जब 1000 चतुर्युग में 14 मनु आते हैं, अर्थात एक मनु का समय करीब 71 चतुर्युग का होता है। अगर 1000 चतुर्युग को 14 से विभाजित किया जाए तो करीब 71 मनु, 71 चतुर्युग एक मनु का समय होता है। इसीलिए इस स्कंद का जो विषय है वो है मनवंतर। दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10 विषयों को देते हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय ईशन कथा मनवंतर। तो मनवंतर ये एक विषय है 10 विषयों में से, तो वो इसमें कहा जा रहा है। और इस मनवंतर को जब कहा जाता है, जब मनु का समय कहा जाता है, देखिए हर चीज कहने के नियम है। जैसे पुराण जब कहे जाते हैं तो पुराणों में पांच चीजें कही जाती हैं। पुराणम पंचलक्षणम, पुराणों के पांच लक्षण हैं। क्या क्या हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्ग का वर्णन होता है अर्थात सृष्टि पहले स्तर पर कैसे हुई। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, फिर विसर्ग का वर्णन होता है ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च, वंशों का वर्णन होता है, जैसे भागवत में भी सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है। तो वंशो मनवंतराणि च, मनवंतर का वर्णन होता है। और फिर वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, फिर उन वंशों में से किसी एक चरित्र का वर्णन होता है। तो ये पुराणों के पांच लक्षण हैं। किसी पुराण में जैसे नरसिंह पुराण है तो उसमें नरसिंह देव का ज्यादा वर्णन किया जाता है। तो ऐसे ये पांच लक्षण होते हैं पुराण के। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ऐसे ही मनवंतर के छह लक्षण होते हैं। जब मनवंतर बताया जाता है तो उसमें छह चीजों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला मनु, अर्थात इस मनवंतर के मनु कौन हुए, पहले दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे 14 मनुओं का वर्णन तो इस पूरे स्कंद में वो होगा। तो सबसे पहला वर्णन छह चीजों में, पहला होता है मनु का। दूसरा होता है मनु के पुत्रों का। मनु का वर्णन करने के बाद उनके पुत्रों का वर्णन किया जाता है कि इस मनु के पुत्र कौन हुए। तीसरा वर्णन होता है उस मनु में जो सप्तऋषि होंगे उनका। हर मनु के समय में सप्तऋषि बदल जाते हैं। सप्तऋषि एक नहीं, एक ही तरह के 7 ऋषि नहीं है कि हर समय वही रहते हैं। हर मनु के समय में सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो इसीलिए सप्तऋषि के, इनके मनु के समय कौन कौन सप्तऋषि हुए, उनके मनु के समय कौन कौन सप्तऋषि हुए, ये वर्णन। कितने हो गए? ध्यान से सुने। पहला मनु, दूसरा मनुपुत्र, तीसरा सप्तऋषि। चौथा वर्णन होता है इंद्र का, क्योंकि देवताओं के राजा वो भी हर मनवंतर में बदल जाते हैं, तो इंद्र कौन होंगे, तो वो वर्णन होता है चौथा। पांचवा वर्णन होता है देवताओं का, तो देवता भी बदल जाते हैं। देखिए हम लोग कभी कभी भगवान की भक्ति को इतना महत्व ना देकर देवी देवताओं की भक्ति को देते हैं, तो इससे हमें यह समझना चाहिए मनवंतर से कि सब कुछ बदल जाता है। देवी देवता भी थोड़े समय के लिए हैं, हो सकता है उनकी आयु बड़ी लंबी हो। जैसे कहा जाता है कि देवता अमर हो गए अमृत पीकर, है ना, अमृत पिया अमर हो गए, फिर देवता मरते कैसे हैं? अगर देवताओं ने इतना युद्ध किया अमृत को पाने के लिए, भगवान ने आकर धोखा दिया मोहिनी के रूप में, फिर भी देवताओं को मरना पड़ता है, तो ये अमृत ठीक नहीं, थोड़ा कुछ मिलावट हो गई उसमें, या देवता नहीं मरते हैं, तो उनको क्यों अमर कहा जाता है देवताओं? देवताओं की भी मृत्यु होती है, देवता भी बदल जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जीवन इतना लंबा है मनुष्य की तुलना में अगर किया जाए, जैसे मनुष्य हम लोग 100 साल जीते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। अब एक चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है, और ऐसे 71 चतुर्युग तक अगर देवता बने रहें तो कितना लंबा जीवन हो गया उनका। तो क्योंकि हमारी तुलना में इतना लंबा जीवन है इसलिए उनको अमर कहा जाता है कि वो मरते नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि देवी देवता मरते नहीं, ये भी एक बहुत थोड़े समय के लिए, भगवान की दृष्टि से, शाश्वतता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत थोड़े समय के लिए पद को पाना है। तो इसीलिए ये सारे पद हैं, इंद्र अग्नि वायु वरुण, ये पद हैं, तो इन पदों पर थोड़े समय तक। तो हर मनवंतर में देवता भी बदल जाते हैं। तो मनु बदलते हैं, मनु के पुत्र बदलते हैं, स्वाभाविक है मनु बदलेंगे तो उनके पुत्र बदलेंगे, सप्तऋषि बदलते हैं, देवता बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं, और हर मनु में, हर मनु के समय में, मनवंतर में भगवान के एक अवतार होते हैं जिनको मनवंतर कहा जाता है। तो ये छह चीजें हर मनु में बदलती हैं। भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, इंद्र अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, सप्तऋषि अलग, मनु अलग और मनुपुत्र अलग। तो इस तरह से ये मनवंतर का वर्णन होता है। भगवान के अवतारों की जब श्रेणियों का वर्णन किया जाता है तो छह प्रमुख श्रेणियां होती हैं भगवान के अवतारों की, जिनमें पहले गुण अवतार होते हैं। गुण मतलब भगवान के तीन, जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनको प्रकट करने वाले, उनको गुण अवतार कहते हैं। उससे पहले पुरुष अवतारों का वर्णन होता है, भगवान तीन पुरुषों के रूप में अपने को विस्तार करते हैं, कारणोदक्षाई, शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई। तो तीन पुरुष अवतार, गुण अवतार और फिर लीला अवतार। भगवान जब लीला करते हैं तो उनको लीला अवतार कहा जाता है। और फिर आते हैं मनवंतर अवतार। हर मनु में, हर मनु के समय में जो मनवंतर अवतार होते हैं। और फिर एक श्रेणी होती है शक्त्यावेश अवतार, और छठी श्रेणी है युग अवतार। तो ऐसे भगवान की श्रेणियां हैं, उनमें से एक, भगवान के अवतारों की श्रेणियां हैं, उनमें से एक मनवंतर अवतार होते हैं, हर मनु में आते हैं। तो उनका वर्णन इस पूरे स्कंद में किया जाएगा कि अलग अलग मनु के समय कौन इंद्र हुए, कौन देवता हुए, कौन सप्तऋषि हुए और कौन से भगवान के अवतार हुए, उन्होंने क्या लीला की। तो ये वर्णन होगा इस पूरे मनु के समय में। तो ऐसे ये पूरा स्कंद बटा हुआ है। तो 14 मनु बता रहे थे कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। तो उन 14 मनुओं के नाम भी इसमें दिए गए हैं, जिसका प्रारंभ स्वयंभू मनु से होता है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, स्वयंभू मनु। तो फिर स्वयंभू मनु, इसमें जो 14 मनुओं का वर्णन किया गया वो है स्वयंभू मनु। दूसरे हैं स्वारोचिष मनु, जो अग्नि के पुत्र हैं, ये स्वारोचिष मनु कहलाते हैं। फिर तीसरे हुए उत्तम, प्रियव्रत महाराज के पुत्र। प्रियव्रत महाराज के कई पुत्र हुए, तो प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे उत्तम, ये तीसरे मनु हुए। चौथे मनु हुए उत्तम के ही भाई तामस, अर्थात प्रियव्रत महाराज के पुत्र, तो तामस वो चौथे मनु हुए। पांचवे मनु हुए रैवत, इनका वर्णन आगे के अध्यायों में आएगा। और छठे मनु हुए चाक्षुष। सातवें मनु, चाक्षुष मनु के वर्णन करते हुए समुद्र मंथन, सत्यव्रत महाराज की कथा, ये भी छठे मनु में हुई थी। चौथे मनु में गजेंद्र मोक्ष की हुई थी। तो सोचिए गजेंद्र मोक्ष की कथा कितनी पुरानी है। हम लोग अब सातवें मनु में चल रहे हैं, वो भी 28 चतुर्युग जा चुके हैं, 28वें चतुर्युग में हैं, आधा समय बीत चुका है उनका, आधे से थोड़ा कम। और इससे पहले छठे मनु हुए, उससे पहले पांचवें, उससे पहले चौथे मनु, उस मनु के समय गजेंद्र की कथा हुई थी, आज अभी की नहीं हुई थी। तो पांचवें छठे मनु चाक्षुष, सातवें मनु जिनका अभी समय चल रहा है विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाते हैं वो, तो वैवस्वत मनु हुए। फिर आगे के मनुओं का वर्णन किया गया है। तो आगे आठवें मनु कहलाते हैं सावर्णी, नौवें मनु कहलाते हैं दक्ष सावर्णी। अब जितने भी आठवों के बाद हैं उन सब का अंतिम शब्द सावर्णी है। तो सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी ये दसवें हुए, धर्म सावर्णी ग्यारहवें हुए, रुद्र सावर्णी बारहवें, देव सावर्णी तेरहवें और इंद्र सावर्णी 14वें मनु हुए। तो ऐसे ये 14 मनुओं का वर्णन हम लोग इस स्कंद में सुनने वाले हैं। तो अब ये पहला अध्याय जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, पहले अध्याय में पहले तीन श्लोकों में परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि और अन्य बताइए, और क्यों बताइए, क्योंकि वो कहते हैं कि हर मनु में भगवान के अवतार हुए, हम उनकी लीला को सुनना चाहते हैं। अर्थात परीक्षित महाराज को ये जानने की रुचि नहीं थी कि कौन मनु हुए, क्या हुए इत्यादि, उनकी रुचि थी उसमें जो भगवान के अवतार हुए उनका वर्णन कीजिए ताकि हम उनकी लीलाओं को सुन सकें। और कैसे कीजिए, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि हमें जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं उनको शास्त्र के आधार पर सुनना चाहिए, अपने मन से हमें अवतारों को नहीं बनाना चाहिए। तो शास्त्र के आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे अवतार होते हैं, प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कई धोखेबाज लोग होते हैं, कई लोग अवतार कहलाते हैं, लेकिन नहीं, हमें शास्त्र के आधार पर, भगवान की कई श्रेणियां हैं अवतारों की, शास्त्र के आधार पर उनको सुने। तो इसीलिए जब भी कोई अपने आप को अवतार घोषित करे तो हमें पूछना चाहिए कि कौन से शास्त्र में वर्णन है, और अगर नहीं है, शास्त्र का आधार नहीं है, तो उनको भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्र के आधार पर हर अवतार का वर्णन है, उनके माता पिता का वर्णन दिया जाता है, कहां प्रकट होंगे, कहीं कहीं माता पिता का वर्णन नहीं है, जैसे नरसिंह देव खंबा फाड़ कर प्रकट हो गए, माता पिता कहां वर्णन करें, लेकिन फिर भी उनका वर्णन है, उन्होंने कहा था मैं प्रकट होऊंगा जब प्रहलाद को कष्ट देंगे। तो सभी शास्त्रों के आधार पर, कृष्ण का भी आदि पुराण में वर्णन हुआ, तो शास्त्र के आधार पर हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को हम इसीलिए भगवान स्वीकार करते हैं, भावनाओं के स्तर पर नहीं, भावुक होकर नहीं, शास्त्र के आधार पर। शास्त्र कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचिसुतः। शास्त्र के आधार पर उनको भगवान स्वीकारा जाता है। तो तब सुखदेव गोस्वामी ने कहना प्रारंभ किया, तो चौथे श्लोक से आगे वो वर्णन करते हैं आठवें श्लोक तक स्वयंभू मनु के तपस्या का। तो वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे मनु हुए, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पूर्व काल के भी बताऊंगा, स्वयंभू मनु का तो मैं तुम्हें सब बता चुका हूं, तो उनके पहले कौन हुए छे उनका भी वर्णन करूंगा और आगे जो होने वाले उनका भी वर्णन करूंगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव और भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। भगवद गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन को भगवान ने बताया कि ये जो ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूं ये पहले दे चुका हूं विवस्वान, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अप्रोक्तवान अहम, मैंने पहले विवस्वान को दिया है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया आपने कैसे विवस्वान को दे दिया, आपकी और मेरी उम्र तो एक ही है और विवस्वान तो करोड़ों साल पहले हुए, तो आपने कैसे उनको दे दिया। मतलब अर्जुन ने कहा कि समझाइए, आप तो मेरी उम्र के 100 जो युद्ध हो रहा था, तो भगवान की उम्र करीब 100 वर्ष की थी, 100 110, तो आप तो मेरी उम्र के हैं, फिर आपने करोड़ों साल पहले ज्ञान कब दे दिया। तो फिर भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे, अंतर क्या है, तुम उन सबको भूल गए हो, और मेरे ही नहीं ये जितने राजा खड़े हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल मेरे ज्यादा जन्म हुए हैं, नहीं, तुम्हारे मेरे और ये जितने भी राजा खड़े हैं इन सबके जन्म हो चुके हैं, और तुम्हें ज्ञान नहीं है मुझे याद है, बस इतना ही अंतर है। तो प्रभुपाद लिखते ये भगवान है, भगवान को अपने सारे जन्म याद है, और इसका प्रमाण वो कभी कभी देते हैं जब प्रकट होते हैं, माता पिता को बताते हैं पिछले जन्म में आप ये थे, आपने मेरी पूजा की थी, आपने मेरी तपस्या की थी, उससे पिछले जन्म में आप ये थे, भगवान बताते हैं ना। तो यही प्रमाण है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। जीव बद्ध अवस्था में शरीर बदलता है, भगवान शरीर नहीं बदलते, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता, इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं। एक सरल बात है ना समझने के लिए कि भगवान क्यों जानते हैं, जैसे हम जब तक इस शरीर में हैं तो हम इस शरीर की बातों को जानते हैं, हमने कितनी पढ़ाई की, हमारा जन्म किस कुल में हुआ, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, हमारा विवाह कहाँ हुआ, कितनी संतानें हैं इत्यादि, ये व्यक्ति पूरा जानता है अपने जीवन के विषय में। तो इसी क्यों, क्योंकि उसका एक ही शरीर है, एक शरीर है इसीलिए उसके बारे में सब कुछ जानता है। भगवान का शरीर बदलता नहीं, उनका एक ही शरीर है, और क्योंकि उनका शरीर नहीं बदलता, वो वही रूप रहता है, इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं। हालांकि वो रूप अलग अलग लेते हैं, कोई कह सकता है शरीर कैसे नहीं बदलता, कभी वो राम में आते, कभी वराह आते हैं, कभी नरसिंह आते हैं, शरीर बदल, शरीर नहीं बदलते भगवान, भगवान वो रूप लेते हैं उस शरीर के लिए। जैसे हमारा ये शरीर है, हम लोग कभी कोई नाटक करने जाएं तो एक रूप बना लेते हैं, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कभी कभी राजा, कभी भिखारी, कभी मालिक, तो ये रूप बनाते हैं, व्यक्ति वही है। इसी तरह भगवान वही है, उनका शरीर नहीं बदलता, वो केवल रूप लेकर आते हैं अलग अलग लीला करने के लिए, इसीलिए उनको सब कुछ याद है। सरल है समझने के लिए, हमें इस जीवन का सब कुछ याद है, जैसे हम लोग अपने बचपन की बात याद है, हालांकि हम लोग इतने बड़े हो गए, लेकिन बचपन में क्या हुआ था, पिताजी ने कैसे मारा था, हम लोग स्कूल जाने में कैसे रोते थे, कुछ बहाने बनाते थे, याद है ये सब। तो इसी तरह भगवान को सब कुछ याद रहता है, उनका शरीर बदलता नहीं है। तो इसीलिए पूर्व काल में जीव रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जीव शाश्वत है, जीव जन्म नहीं लेते। भगवान जैसे शाश्वत है वैसे जीव भी शाश्वत है, जीव का जन्म नहीं होता, केवल भगवान उनको प्रकट कर देते हैं। जैसे कहा जाता है कि पहले एक ही थे और फिर भगवान ने अपने आनंद के लिए कई जीवों को प्रकट किया, तो जन्म नहीं है भगवान प्रकट के, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। इसी तरह जीव का जन्म नहीं होता, जीव को भगवान प्रकट करते हैं, केवल बद्ध अवस्था में हम शरीर जब अलग अलग ग्रहण करते हैं तब जन्म और मृत्यु होती है। तो ऐसे अब सुखदेव गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं, तो स्वयंभू मनु से वर्णन करते हैं कि स्वयंभू मनु का मैंने तुम्हें बता दिया, स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, स्वयंभू मनु की दो पुत्रियों का वर्णन वो करते हैं, पुत्रों का नहीं, पुत्री जैसे आकुति और देवहूति, और देवहूति का वर्णन पहले ही कर चुके हैं, उनसे कपिल भगवान प्रकट हुए थे, और दूसरे हुए यज्ञ मूर्ति आकुति से। तो अब मैं उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि उन्होंने बताया, मैं देवहूति का वर्णन कर चुका हूं, सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया था तीसरे स्कंद में। तो उन्होंने बताया कि स्वयंभू मनु जब अब समय आया तो वो सब कुछ छोड़कर वन में चले गए अपनी पत्नी के साथ, और वहां पर तपस्या करने लगे, बड़ी कड़ी तपस्या की उन्होंने। वर्णन है कि उनको वैसे भी कोई रुचि नहीं थी राज्य में, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या की। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक राजा के लिए अनिवार्य है कि वो आसक्त ना हो, जब राजा आसक्त नहीं होता, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, तब वो प्रजा की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। लेकिन अगर राजा आसक्त हो जाए, इंद्रियों को वश में नहीं रख पाए, तब फिर प्रजा की भलाई नहीं कर सकता। तो कहते हैं यहां उदाहरण है, स्वयंभू मनु इतने बड़े स्तर पर थे लेकिन सब छोड़कर फिर तपस्या के लिए चले गए, एक पांव के ऊपर खड़े होकर, सुनंदा नाम की नदी के किनारे एक पांव पर खड़े होकर स्वयंभू मनु ने तपस्या की। 100 वर्षों तक तपस्या उन्होंने की बड़े विस्तार, और फिर उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान को। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, आज का श्लोक जो हमने पढ़ा ये दूसरी प्रार्थना है उनकी इस अध्याय की, जिसमें उन्होंने भगवान के संपत्ति का वर्णन किया कि भगवान सब कुछ जानते। उससे पहले वो भगवान की स्थिति का वर्णन करते हैं कि भगवान है कौन। तो ये प्रार्थना है, वैसे इस श्लोक को हम लोग ईशोपनिषद में भी देखते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इन्होंने प्रार्थनाओं के रूप उपनिषद को कहा, तो ईशोपनिषद में भी थोड़ा सा बदलाव करके एक शब्द का यही श्लोक आता, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम्। और इसी तरह यहां पर वो कह रहे हैं आत्मवास्यम इदम विश्वम। तो बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण करना प्रारंभ किया, और ये प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अपने पुत्रों को पौत्रों को उपदेश दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम सबको भी। इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो पहली प्रार्थना वो प्रारंभ करते हैं जहां वो कहते हैं कि भगवान की स्थिति, भगवान कौन है, और वो बताते हैं कि भगवान ये सभी चीजों के सृष्टा हैं, सभी चीजों की निर्मिति करते हैं लेकिन उनकी निर्मिति नहीं होती है। सर्व कारण कारणम, उनकी कोई निर्मिति नहीं करते हैं, वो सब चीजों की निर्मिति करते हैं, इसीलिए उन्हें सृष्टा कहा जाता है। तो भगवान की स्थिति का वर्णन करते हैं। स्थिति का वर्णन करते हुए तीन महत्वपूर्ण बातों को वो कहते हैं। पहला, भगवान सृष्टा है, सृष्टि करते हैं। दूसरा, भगवान साक्षी हैं। और तीसरा, भगवान सर्वत्र हैं और सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो तीन चीजों का वर्णन करते हैं। तो इस जगत में जो भी कुछ है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, इस जगत को भगवान बनाते हैं। कई ऐसे धर्म हैं जहां वर्णन किया जाता है एक विशेष धर्म में कि इस जगत का कोई सृष्टा नहीं है, ये अपने आप आ गया। और धर्म ही क्यों, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसको मानने लगे हैं कि अपने आप ये जगत आ गया। अभी कुछ दिन पहले नासा, अमेरिका है, अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है, तो उसने एक रिसर्च किया, किसी ने हमें भेजा था, हमें पता नहीं सत्य कितना है, लेकिन किसी ने भेजा था कि उनके रिसर्च में उन्होंने वो बहुत समय से जो सूर्य में ध्वनि होती है उसको अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे सूर्य की क्या ध्वनि है, उसको उन्होंने बहुत अध्ययन करके उस ध्वनि को किसी तरह रिकॉर्ड करके उसको सुनने लायक बनाया, क्योंकि वो ध्वनि हम डायरेक्ट तो सुन नहीं सकते हैं, हमारी सुनने की क्षमता नहीं है। तो उन्होंने मनुष्य के सुनने लायक बनाया और उन्होंने उसको रिलीज किया। तो कुछ दिन पहले किसी ने हमें भेजा था, तो उसको अगर सुने उस ध्वनि को तो क्या निकल रहा है, उसमें से ओम शब्द निकल रहा है, ये कहा गया। अगर उसको सुने जो नासा ने रिलीज की है तो केवल ओम, बारंबार ओम ओम, यही पूरा यही ध्वनि है वहां की। हमने जब सुना तो हमने कहा कि सूर्य देव भगवान को पुकार रहे होंगे, भगवान की वो तो सतत वहां पर पूजा करते रहते हैं, यज्ञ चल रहा होगा, तो ओम ध्वनि तो स्वाभाविक है। तो ये प्रमाण है कि भगवान सारी चीजों के सृष्टा हैं, हर चीज में व्याप्त है, भगवान बनाते हैं हर। तो अपने आप नहीं आता सब कुछ, सूर्य अपने आप आ गया, चंद्रमा अपने आप आ गया, ये जगत अपने आप आ गया, नहीं, अपने आप नहीं, भगवान सृष्टा है। दूसरी चीज वो बताते हैं कि भगवान साक्षी हैं, कोई उनको नहीं देखता लेकिन वो सबको देखते हैं। और वो ये स्वयंभू मुनि कहते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं देखता हमको तो भगवान भी किसी को नहीं देखते हैं, नहीं, हमने आंखें बंद कर ली हमें भगवान नहीं दिखते, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमें नहीं देख सकते। तो दूसरी चीज हमें जाननी चाहिए भगवान की स्थिति में कि भगवान सबको देख रहे हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं हम सबको, इसीलिए वो साक्षी हैं। भगवद गीता में भी इसको कहा जाता है, जब परमात्मा का वर्णन किया गया है तो उसमें वर्णन किया गया है कि उपदृष्टा, उपदृष्टा मतलब सब कुछ देखने वाला। तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए हमें पाप करने से बचना चाहिए। कई बार लोग पाप करते हैं ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, भगवान सब देखते हैं, तो ये बता रहे हैं वो। तो पहली चीज कि भगवान सृष्टा है, भगवान ने सबका सबकी रचना की है, इसके द्वारा हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें सब कुछ चीजें भगवान की माननी है, इसीलिए आगे वो इस बात को कहेंगे कि ये सब भगवान का है। तो सृष्टा है तो जिन्होंने बनाया उनकी चीज है। दूसरे जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण दे रहे थे कि भले हम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो किसका है, भगवान का, इसीलिए सब कुछ उनका। दूसरी चीज वो सब चीज के साक्षी हैं, सब देख रहे हैं भगवान, हमें कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां छुपकर हम कोई कार्य कर, आप जो सोचते हो किसी के बारे में गलत वो भी भगवान जानते हैं। इसीलिए हमें अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको शुद्ध करना है। अगर शुद्ध भावनाएं हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर भावनाएं गलत हैं, बाहरी दिखावा है, तो फिर चीजें सही नहीं होंगी। शुद्ध भावनाएं, तो ये है कि भगवान सब देख रहे हैं। और तीसरी चीज वो बताते हैं कि भगवान सब जगह पर है, सर्वत्र हैं, और इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह सब चीजों को जानते हैं। क्या जानते हैं? आपके शरीर क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भूत में जो हो गया, अभी वर्तमान में क्या होगा, ये सब वो जानते हैं। तो ऐसे भगवान सर्वज्ञ हैं, यह सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे गुणों को कहकर अब वो इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि भगवान की सारी संपत्ति है, ईशावास्यम या इदम सर्व, ये सब कुछ भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उन्होंने जितना हमें दिया है बस उतना उसका उपयोग करना चाहिए, दूसरे के हिस्से को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा कितना हिस्सा है हमें कैसे पता चले? हम तो सोचेंगे सारा जगत हमारा हिस्सा है, जितनी आवश्यकता है, प्रभुपाद समझाते हमारा हिस्सा कितना है, जितने हमें जीवन जीने के लिए आवश्यकता है उतना स्वीकार करना, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ताकि हम शरीर और आत्मा को बनाए रखें और भगवान की भक्ति में लगे रहें। वो हमारा हिस्सा, उतना हमें लेना चाहिए, उससे ज्यादा है प्रभुपाद कहते भगवान को दे दो। धन बहुत आ गया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग मत बनाओ, मंदिर बना दो भगवान का, संतुष्टि हो जाएगी। प्रभुपाद लिखते अपना घर बनाने का लाभ मिल जाएगा, अपना घर बनाओगे भगवान का नहीं बनाओगे तो संतुष्टि नहीं, लाभ नहीं हो, इसलिए ज्यादा है भगवान को दे दो सेवा में। तो इस श्लोक को कहते हैं, और आगे भी बहुत सुंदर उनकी प्रार्थनाएं हैं, तो कल इनकी प्रार्थनाओं को आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं। और फिर चार मनुओं का वर्णन होगा, पहले चार मनु प्रारंभ करके स्वयंभू मनु का तो वो कर ही रहे हैं, फिर आगे स्वरुचिष का, उत्तम और तामस का वर्णन करेंगे, और फिर आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।